आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और आज हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पनप रहे सोलार एनर्जी संबंधों की। एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाव दिया जा रहा है कि साउथ एशिया रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी यानी सारिक के अगले फेज में भारत को एक अहम भूमिका दी जाए। इसका मतलब है कि सोलार एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज और क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स जैसे क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं और इसका फायदा पूरे दक्षिण एशिया को मिल सकता है। इस प्रस्ताव को समझने के लिए आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट और लेक्चरर डॉक्टर सिमरन केसवानी के साथ।
तो मेरा नाम सिमरन है, मैं एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर हूँ। मेरी रिसर्च ब्रॉडली इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर है। मैंने खासतौर पर ये स्टडी की क्योंकि मैं चाहती थी कि इंडिया में हो रही जितनी भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फर्म्स, गवर्नमेंट्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट एंटिटीज मिलकर सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए सेक्टर्स में डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। ब्रॉडली मेरी रिसर्च इंडिया की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप पर है, खासकर साउथ एशिया और ग्लोबल साउथ में उसकी बढ़ती भूमिका को समझने में है। मेरा मानना है कि इंडिया को सिर्फ एक बड़े मार्केट के रूप में नहीं बल्कि नॉलेज, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और रीजनल लीडरशिप के सेंटर के रूप में देखना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत जरूरी है।
सिमरन, आज हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी और सोलार सप्लाई चेन के क्षेत्र के बारे में, तो आप इसमें एक्सपर्ट हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि पिछले कुछ सालों में आपने इस क्षेत्र में दोनों देश यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच किस तरह के डेवलपमेंट्स यानी विकास देखा है।
बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, बट एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसका नाम है साउथ एशिया रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, सारिक। ये एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम था जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी आज। फेज वन को अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ऑस्ट्रेलिया ने कोविड के रहते 2020 में करीब $32 मिलियन के साथ ये इनिशिएटिव शुरू किया था। इसका काम रोड्स या पावर प्लांट्स खुद बनाना नहीं था, इसका एक बहुत सिंपल फंक्शन था कि साउथ एशियन कंट्रीज जिनसे ऑस्ट्रेलिया का एंगेजमेंट अभी इतना डीपली नहीं हुआ था उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए तैयारी करने में मदद करें, यानी प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना होगा, इन सब चीजों पर ग्राउंड वर्क करना। अगर हम आज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशनशिप हैज नेवर बीन सो मच स्ट्रॉन्गर एंड बोल्स्टर्ड टू दिस लेवल। आज ये बात ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तक आकर खत्म हो जाती है। मेरा मानना है कि सारिक को रिन्यू करना चाहिए फेज टू के लिए, लेकिन इस बार इंडिया को एज अ सेंट्रल नोड हमें समझना चाहिए क्योंकि साउथ एशिया का पोटेंशियल अनलॉक करने की इंडिया के पास है।
जी, जब आप कहती हैं कि ये की जो है ये इंडिया के पास है, इसका कोई खास कारण?
तो इंडिया के पास जितनी रीजनल नॉलेज है, रिलेशनशिप्स हैं, फर्म्स, मार्केट्स, टेक्निकल नो हाउ, इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजिशन साउथ एशिया में, ऑस्ट्रेलिया के पास फाइनेंस, फीजिबिलिटी स्टडीज, रेगुलेशन, प्रोक्योरमेंट और एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स जैसे बहुत एरियाज हैं जहां पर ये सिनर्जी आगे जा सकती है। तो दोनों की स्ट्रेंथ काफी कॉम्प्लीमेंटरी भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स, माइनिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट फाइनेंस का एक्सपीरियंस है और इंडिया के पास स्केल है, बहुत बड़ा मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, स्किल्ड वर्कफोर्स और वेरी रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स एज वेल। और ये सब लो कॉस्ट पर अचीव करना, इसकी विल पावर भी इंडिया रखता है। तो इंडिया को सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मिनरल्स या टेक्नोलॉजी का बायर नहीं बनना चाहिए उसे को डेवलपर, मैन्युफैक्चरर और इवेंचुअली एक्सपोर्टर एंड रीजनल लीडर की भूमिका में होना चाहिए।
यदि सारिक के अगले फेज में भारत को प्रमुख भूमिका मिल जाती है तो इससे भारत, ऑस्ट्रेलिया और पूरे साउथ एशिया के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी, किस तरह के अवसर हमें देखने को मिल सकते हैं और साथ ही क्या इसमें किसी तरह की चुनौतियां भी आएंगी?
यहाँ इंडिया की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया में सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा बल्कि एक नया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बन रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ ये नहीं कह रही कि इतने गीगावाट सोलर कैपेसिटी हमें चाहिए, इतने बड़े बड़े प्लांट्स आ जाने चाहिए। इंडियन स्टेट एक्टिवली एक मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। बात करते हैं सोलर पीएलआई मैन्युफैक्चरिंग पुश की, तो फेकी के ऑप्शंस से लेकर डिमांड क्रिएशन जो शुरुआती दौर पर हुआ था उसमें आईरेडा की इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंसिंग और अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अगर हम सब कुछ को इकट्ठा देखें तो एक नई इंडस्ट्री बिल्ड करने की कोशिश जारी हुई जिसमें ये सारे इंस्टीट्यूशंस एक्टर्स बन गए। और दूसरी तरफ फर्म्स हैं, अगर हम बात करें रिन्यू एनर्जी की, आज से 15 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि ऐसी फर्म है, और आज देखें तो रिन्यू हैज अ प्रेजेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज वेरी एक्टिव इन ऑस्ट्रेलिया, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, वारी मैन्युफैक्चरिंग, विक्रम सोलर, ये फर्म्स धीरे धीरे करके इस इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं और ये फर्म्स इंटरनेशनली अक्लेम्ड भी हैं। Suzlon, again, very active in the Australian market. Greenco, another very good story. Reliance as well. Academic language में इस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है, पर ये बात अभी तक ordinary Australians तक नहीं पहुंची है। तो अगर हम academics की बात करें तो India में एक entrepreneurial state emerge हो रहा है और ये सारे developments Australia के लिए बहुत बड़ी opportunity लाए हैं।
जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आप इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, क्या अभी तक ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में सोलार एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित कोई ऐसा समझौता हुआ है जो मतलब एक स्टेटमेंट रहा हो?
तो पिछले कुछ सालों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप काफी तेजी से डीपन हुआ है। पहले इस रिलेशनशिप में ट्रेड, एजुकेशन और सिक्योरिटी ज्यादा विजिबल थे, लेकिन अब क्लीन एनर्जी एक मेजर स्ट्रेटजी बन गया है। सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट अगर आप मुझसे पूछें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप है। इसे 2024 में लॉन्च किया गया था और 2025 में इसकी पहली मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी। इसके अंदर सोलर पीवी, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट और स्किल्स पर प्रैक्टिकल कोऑपरेशन हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स और सोलर टास्क फोर्स भी इसी ब्रॉडर रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं। दूसरा बहुत बड़ा एरिया है क्रिटिकल मिनरल्स। यहाँ दोनों कंट्रीज की एक नेचुरल कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिखाई देती है। ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम और दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रिसोर्स बेस है, जबकि इंडिया को बैटरीज, ईवीज और क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन इनपुट्स की जरूरत है। बहुत सारे टास्क फोर्सेज, पार्टनरशिप्स और अग्रीमेंट्स बन चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनसे कितने एक्चुअल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं, कितनी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितना इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज हुआ है और कितनी टेक्नोलॉजी लैब से निकलकर मार्केट तक पहुंची है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन दोनों इकोनॉमीज का स्ट्रक्चर काफी अलग है। ऑस्ट्रेलिया लार्जली रिसोर्सेज, मिनरल्स, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग है, मगर एक कंज्यूमर इकोनॉमी है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, डिप्लॉयमेंट और स्केल में बहुत तेजी से कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, इसीलिए इस रिलेशनशिप को सिंपली बायर और सेलर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। रिलेशनशिप आइडियली ऐसी होनी चाहिए जहां ऑस्ट्रेलिया रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी और इंडिया एक्सपोर्ट और स्केल में साथ आए। इसी से एक अलग वैल्यू क्रिएट होगा जो बायलैटरली इस रिलेशनशिप को और आगे लेकर जाएगा। और सारे की इम्पोर्टेंस यही आती है, जो रीजनल नॉलेज, रिलेशनशिप्स, ज्योग्राफीज, पोजीशंस और टैलेंट इन दोनों देशों के पास है, उससे साउथ एशिया की इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का नक्शा बदला जा सकता है। और अगर आप आज के दौर की बात करें, दुनिया में हर चार में से एक इंसान हैज साउथ एशियन एंसेस्ट्री और सम रूट्स इन साउथ एशिया, एंड दिस एरिया इट विल बी वेरी डायनामिक आगे जाकर। सो इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की जरूरत है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं।
SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आए भव्या। पांडे।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।